नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आरा के गोपाली चौक के पास अपराधियों ने एक आभूषण शोरूम से लगभग 25 करोड़ रुपए मूल्य के जेवरात लूटे। पुलिस ने दो अपराधियों को किया गिरफ्तार। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया। जहानाबाद और पटना के बाद अब भागलपुर और मुंगेर में भी बर्ड फ्लू की हुई पुष्टि। राज्य सरकार ने कहा, केंद्र सरकार की तर्ज पर वेतन आयोग को पूरी तरह लागू करना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। और पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आज से नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। अब समाचार विस्तार से। आरा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपाली चौक के पास अपराधियों ने एक आभूषण शोरूम से लगभग 25 करोड़ रुपए मूल्य के जेवरात लूट लिए। पुलिस अधीक्षक मिस्टर राज ने बताया कि बरहड़ा थाना पुलिस ने बबुरा छोटी पुल के पास तीन मोटरसाइकिल सवार अपराधियों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो अपराधियों को गोली लगी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से कुछ जेवरात भी बरामद किए गए हैं। वहीं चार अन्य अपराधी भागने में सफल रहे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गौरतलब है कि आज सुबह 6 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के बल पर शोरूम का शटर बंद कर लूट की घटना को अंजाम दिया था। अपराधियों ने शोरूम के कार्ड से बंदूक भी लूट ली थी। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है। जहानाबाद और पटना के बाद अब भागलपुर और मुंगेर में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। भागलपुर में प्रशासन ने 5000 मुर्गे मुर्गियों को मारने का निर्देश दिया है। इधर पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान में एहतियात बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर वेतन आयोग को पूरी तरह लागू करना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। विधानसभा में कांग्रेस के अजय कुमार सिंह के प्रश्न के जवाब में प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि राज्य में वर्ष 2017 में 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू की गई थी। इसके कई मुख्य प्रावधानों को लागू किया गया था। कांग्रेस सदस्य ने केंद्रीय कर्मियों की भांति राज्य कर्मियों को ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी और अन्य सुविधा देने की मांग की थी। उन्होंने सरकार द्वारा दिए गए उत्तर को चुनौती देते हुए कहा कि महंगाई भत्ता 50% से अधिक होने पर ग्रेच्युटी को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जाए। सीपीएम के अजय कुमार ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 225 से अधिक सीटों पर जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोग अब राजद पर भरोसा करने वाले नहीं हैं।
डबल इंजन की वो सरकार जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रदेश के स्तर पर कर रहे हैं, आज की तारीख में जनता मानती है कि यही वो गठबंधन है जो सही मायनों में बिहार को एक विकसित राज्य बना सकता है। ऐसे में बड़ी बड़ी बातें दावे अब किए जा रहे हैं। ये वही दल है जिन्होंने सबसे ज्यादा पलायन करने के लिए जो जिम्मेदार थे, जिन्होंने बिहार को बदनाम कर उसको जंगल राज का नाम देने का काम किया है। ऐसे में बिहार की जनता कतई इनके ऊपर भरोसा नहीं करने वाली है। जैसे ही अभी चुनाव होंगे, एक बड़ी जीत के साथ 225 से ज्यादा सीटें जीतकर एनडीए का गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है।
इधर लोजपा आर की सांसद शांभवी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद इंडी गठबंधन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।
बिहार की जनता ने आरजेडी की सरकार को धुतकार दिया है। हमने लोकसभा में भी देखा है, उनको जो आरजेडी की सरकार है वो नहीं चाहिए। और उपचुनाव में तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि ये बिहार विधानसभा का सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल में उनको पूरी तरीके से आरजेडी को खत्म कर दिया गया। तो हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को हम लोग, जैसे हमने पहले भी कहा था, इंडिया अलायंस को हम लोग विलुप्त कर देंगे और बिहार चुनाव के बाद इंडिया अलायंस कहीं भी नहीं बचेगा।
भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि एनडीए गठबंधन को यदि बिहार विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर भी जीत मिलती है तो यह एक बड़ी बात होगी। संवाददाताओं से बातचीत में डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव खुद एक टूटती नाव है।
जिस तरह से उन्होंने घोटाला किया, जिस तरह से उन्होंने बिहार का विकास रोका, उसके कारण उनको हटाया गया। और वैसे व्यक्ति जिसको कोई बिहार में पूछ नहीं रहा, वो क्या किसी के साथ गठबंधन करेगा? उनको गठबंधन को 50 सीटें अगर आ जाए तो यही बहुत है। तेजस्वी यादव डूबते नाव है, जो कि उस पर जो सवारी करेगा वो लालू यादव के बोझ तले समाप्त हो जाएगा।
राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि एनडीए में शामिल दलों को आरक्षण से कोई मतलब नहीं है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने आरोप लगाया कि एनडीए में शामिल दल केवल सत्ता में बने रहना चाहते हैं।
सबसे पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण बढ़ाया, उसके बाद लालू जी ने आरक्षण बढ़ाया, फिर राबड़ी देवी जी ने अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया, उसके बाद अब तक जो है आरक्षण नहीं बढ़ा था। 17 महीने जब हम लोगों की सरकार थी उसके बाद जो है आरक्षण बढ़ा और अति पिछड़ों का 24-25% जो है उसमें से किया गया और टोटल 65% आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाने का काम। इन लोगों को पिछड़ों, दलितों, अति पिछड़ों, गरीब जनता से कोई मतलब नहीं, इन लोग तो केवल सत्ता का सुख चाहते हैं।
पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी प्रसाद यादव के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और स्वयं उन्हें महागठबंधन में निर्णय लेने का अधिकार है। श्री यादव ने कहा कि महागठबंधन में कोई भी निर्णय सामूहिक होता है। उन्होंने कहा कि राजद के कोई भी नेता अकेले गठबंधन में निर्णय नहीं ले सकते हैं।
महागठबंधन का निर्णय सामूहिक होता है, सबकी सहमति से होता है, और महागठबंधन का निर्णय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लालू यादव, माले के नेता सब मिल के लेंगे और कांग्रेस उसका नेतृत्व करेगी। सवाल ही नहीं उठता है कि आरजेडी और उनके कोई भी नेता अकेला सक्षम है निर्णय लेने के लिए। वो अपने पार्टी के निर्णय लेने में सक्षम है, महागठबंधन का निर्णय कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठ के ही होगा, अलग नहीं हो सकता है और न थोपे जा सकते।
कांग्रेस 16 मार्च से पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा की शुरुआत करेगी। पटना स्थित प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई और युवा कांग्रेस की ओर से चंपारण के भितिहरवा आश्रम से पदयात्रा की शुरुआत होगी।
इस यात्रा में जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या नेता हो, वो सीधा मुद्दों को लेकर जनता की आवाज बनकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम करेगा और यात्रा में जनता तक इन मुद्दों को लेकर जागरूकता फैलाने का काम करेगा।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिवसीय यात्रा पर मॉरिशस जा रहे हैं। श्री मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से भोजपुरी में विशेष बातचीत का प्रसारण कल 8:15 पर आकाशवाणी के पटना समेत कई अन्य केंद्रों से किया जाएगा।
मॉरिशस, जहां आधी से ज्यादा आबादी की जुबान है भोजपुरी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे वहां। इस दौरे से पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से भोजपुरी में होगी बातचीत, जिसका प्रसारण आप सुन सकेंगे 8:15 पर पटना, सासाराम, वाराणसी, गोरखपुर और ओबरा के आकाशवाणी केंद्रों से।
राज्य सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि यह समिति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल पर सुझाव देगी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 40,000 से अधिक, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 60,000 लाभार्थियों का चयन किया गया है।
इस वित्तीय वर्ष का 24-25 का, क्योंकि जितने लोगों ने आवेदन दिया था उनके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटियां थी, तो स्क्रूटनी के बाद लगभग 40,000 को योग पाया गया तो उनको राशि दी गई। इसी महीने के 7 तारीख को वित्तीय वर्ष 24-25 में पिछले वर्ष के लक्ष्य को और इस वर्ष के लक्ष्य को जोड़ के 59,000 लोगों का चयन किया गया है और 11,000 लोगों को वेटलिस्ट में रखा गया है कि जिनके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटियां होंगी तो वेटलिस्ट में से लिया जाएगा। उद्यमिता का एक नया कल्चर बिहार में प्रारंभ हो रहा है, जहां ग्रामीण स्तर पर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और या बिहार लघु उद्यमी योजना के माध्यम से हम स्वरोजगार के लिए बढ़ावा दे रहे हैं।
पूर्वा हवा के प्रभाव से राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 33.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी हो सकती है।
अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। आने वाले दिनों के दौरान अधिकतम के साथ साथ न्यूनतम तापमान में क्रमिक वृद्धि देखी जा सकती है।
पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आज से नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। इस प्रतियोगिता में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 से अधिक महिला और पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता 12 मार्च तक चलेगी। IRCTC 27 मार्च को बेतिया से भारत गौरव ट्रेन का परिचालन करेगी। IRCTC के संयुक्त महाप्रबंधक राजेश कुमार ने समस्तीपुर में बताया कि इस ट्रेन के माध्यम से श्रद्धालु दक्षिण भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों का दर्शन कर सकेंगे।
बेतिया से ट्रेन चला रहे हैं। इस बार थीम है ज्योतिर्लिंग दर्शन के साथ साथ दक्षिण भारत की यात्रा। जिन जिन जगहों पे हम यात्रा करने जाएंगे वो है तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी और उसके बाद आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इसमें जो दर रखा गया है वो 2 भागों में है। एक स्लीपर क्लास में जो लोग यात्रा करेंगे उनके लिए 22,520 रुपया प्रति व्यक्ति है और जो लोग 3 AC में जो यात्रा करेंगे उनके लिए 38,310 रुपया है।
झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के राजनगर और वैशाली लोकसभा क्षेत्र के पखड़ा में जल्द ही पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत होगी। पटना के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने बताया कि 22 मार्च को इन दोनों पासपोर्ट सेवा केंद्रों का औपचारिक तौर पर शुभारंभ होगा। राज्य में अभी 35 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित हैं। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत बिहार राज्य भारत स्काउट एंड गाइड कार्यालय परिसर में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आरा के कोपाली चौक के पास अपराधियों ने एक आभूषण शोरूम से लगभग 25 करोड़ रुपए मूल्य के जेवरात लूटे। पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया। जहानाबाद और पटना के बाद अब भागलपुर और मुंगेर में भी बर्ड फ्लू की हुई पुष्टि। राज्य सरकार ने कहा, केंद्र सरकार की तर्ज पर वेतन आयोग को पूरी तरह लागू करना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। और पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आज से नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।